हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की समवेत भक्त वृंद की श्री मकर संक्रांति महोत्सव की निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरे कृष्ण। आपको सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा साइड हो जाए, जेंट्स वन साइड लेडीज वन साइड क्लम क्लोजर, ये प्रैक्टिकल है। नो आप एक साइड हो जाओ, जेंट्स की साइड, माता जी लोग की इस तरफ आ जाए। तो इसीलिए बोला ना नजदीक आ जाओ, यू कैन मेक देम जेंट्स दिस साइड लेडीज दिस साइड, जेंट्स दिस साइड राइट साइड जेंट्स लेफ्ट साइड लेडीज। नहीं कंपलसरी यही सिस्टम
पीछे चले जाओ, यहाँ से सब पीछे चले जाओ, माता जी आगे आ
इधर आ जाए उनको और सेट ओके। अभी सबको सुनाई पड़ रहा है, अपना इतना वॉल्यूम है और ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण, बस अभी शांत हो जाए। अब तो सुनाई पड़ रहा ना, एक तो साउंड नहीं, फिर आपने लोग साउंड करेंगे तो कैसे सुनाई पड़ेगा। हाँ बच्चों को साइलेंट मोड में डाल दो। तो आज केवल आपके इस अहमदाबाद में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी उत्सव है, तिथि है, उसको अनेक अनेक जगह में अनेक अनेक भाषा में अनेक प्रकार में कहते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे जो दक्षिण भारत जानते हैं, पोंगल, थ्री डेज फेस्टिवल, बिग फेस्टिवल, होल फोर स्टेट पोंगल, ओडिशा बंगाल में मकर संक्रांति, यहाँ उत्तर यूपी में बिहार में मकर संक्रांति कहते हैं, असम साइड में ईस्ट में जाएंगे वो माघ बिहू ऐसे कहते हैं। आप कभी इधर मकर संक्रांति को माघी मेला माघ मेला कहते हैं, उत्तरायण संक्रांति भी कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा सुबह होकर के शाम होता है, दिन चला जाता है फिर शाम से सुबह तक रात होता है, ठीक इसी प्रकार जब हमारा 6 महीना दिन और 6 महीना रात पूरा हो जाएगा, देवलोक में स्वर्गलोक में 1 दिन होता है 12 घंटा और फिर 6 महीना बीतने से फिर 12 घंटा रात होता है, ऐसे ही है। तो जैसे शाम को हम सोते हैं रात में दरवाजा खिड़की से बंद करके सोते हैं ना, फिर सुबह उठ करके खोलते हैं फिर काम धाम लग जाते हैं, ठीक इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के जो अधिदेव जो कार्यकारी देववृंद हैं, नाना प्रकार के डिपार्टमेंट हेड से देवता हैं, उन लोगों का रात होता है वो हमारे मनुष्य के गणना के हिसाब से 6 महीना तक चलता है, उनके हिसाब से 12 घंटा हमारे हिसाब से 6 महीना। तो रात को सो जाते हैं खिड़की कबाड़ बंद बंद करके, तो देवलोक बंद रहता है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण आयन। सूर्य जब दक्षिण दिशा पर मेष राशि से लेकर के धनु राशि पर्यंत पुष मास पर्यंत माघ से पुष तक ये 6 महीना ये दक्षिण आयन है, देवताओं के रात है, दरवाजा कवाट बंद करके सोते हैं। फिर पुष से लेकर के पुष पूर्णिमा गया माघ मास से लेकर के 6 महीना तक वो दिन होता है देवताओं का, उसी दिन से फिर शुरू होता है दिन। दिन जैसे दरवाजा खोलने से काम धाम कर शाम तक तीखता बढ़ा क्यों देगा, तो इसलिए ज्यादा हो गया कम करो। तो इसलिए ये जो उत्तर आयन है हम इसलिए उत्सव करते हैं क्योंकि देवताओं का घर का दरवाजा खिड़की अभी खुलेगा, उनके दिन हुआ, देवलोक उच्चलोक है ना, उच्चलोक में देवता रहते हैं तो उनके दरवाजा खोलते हैं उनको ग्रीटिंग करने के लिए, हेलो गुड मॉर्निंग। तो इसलिए ऊपर के ऊपर एक पतंगे छोड़ते हैं जितना ऊपर जाए तो उनको बधाई देने के लिए, इसीलिए ऊपर की ओर देते हैं। और इसलिए शुभ है क्योंकि ब्रह्मांड के कार्यकर्ता जो हैं वो तो बंद रहते हैं, अभी इस दिन में काम काज चलेगा, तो इसलिए शुभ सखाल गुड मॉर्निंग सवेरे को शुभ कहते हैं और पूरे काम में लगते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड के कार्य चालू होगा जब इसी दिन से दिन शुरू हुआ, भगवान सूर्य उत्तर की तरफ गति करते हैं तो ये उत्तरायण रहेगा 6 महीना तक। इसी समय में भी कहा गया भगवद गीता में भगवान कहते हैं योगी लोग जो शरीर छोड़ते हैं पितृजान देवजान पुनरावृत्ति होता है, जब दक्षिणायन में जाएंगे तो उच्च लोग तो बंद ही दरवाजा जाएंगे कहा, वो पितृलोक में जाएंगे ना तो वापस आएंगे अंधार पक्ष है तो डार्क, और इस उत्तरायण में लाइट जाएंगे स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कहा गया उच्च गति होता है, नहीं तो ऊपर के दरवाजे बंद रहता है बाकी समय 6 महीना तक। तो ये उत्तर आयन दक्षिण आयन मैं जैसे सुबह बता रहा था हमारे वैदिक गणना के अनुसार सूर्य और चंद्र 2 कालचक्र हैं, भगवान ने समय के अनुसार समय के लिए 2 चक्र चला रखे हैं, 1 दिन में 1 रात में। भगवान कहते हैं शशि सूर्य नेत्रम ये मेरा 2 आंख है, और ब्रह्मा जी तो सूर्य भगवान के लिए यहां तक कहे हैं जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्ति अशीष तेजा जस्य ज्ञाया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिसके अज्ञान से संपूर्ण कालचक्र गति करता है, वो कालचक्र किसके अज्ञान से चलता है? भगवान गोविंद के अज्ञान से। किसको आज्ञा देते हैं, कौन चलाता है? ना उनके आंख के सदर उनके नजर में रहता है सूर्यमंडल सूर्यलोक। जच्चक्रेश सविता सकल ग्रहाणंग राजा, सकल ग्रहों के राजा है। सुरमूर्ति अशीष तेजा, अशीष तेज संपन्न महातेजस्वी भगवान सूर्य इस कालचक्र को कालचक्र के रूप में चलते हैं। इसलिए सूर्य नारायण, सूर्य भगवान को नारायण कहा जाता है। उनको जब स्तुति करते हैं जच्चक्रेश सब सूर्य भगवान के प्रणाम मंत्र नमो सवित्री जगदग चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयी मायाया, तीन रूप में रहते हैं। तो इस आदित्य हृदय, आदित्य के हृदय में भगवान नारायण रूप में रहते हैं, सूर्य नारायण के रूप में। सूर्य को रवि कहते हैं, जानते ना रवि। और आज कौन सा बार है? रविवार है, उनके बार है। सन डे, सन कटे है, मून डे नहीं है। कल मून कटे होगा, चंद्रवासर काल होगा। आज रवि के बार है। रवि के बार में रवि के गति चढ़ायमान आज हो रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। कहां को संक्रमण कर रहे हैं? न धनु राशि से मकर राशि को संक्रमण कर रहे हैं। अभी तक धनु राशि में थे, धनु राशि से आज की तिथि में उन्होंने मकर राशि को संक्रमण करेंगे। तो ये संक्रमण को इसी संक्रांति कहते हैं। सूर्य भगवान संपूर्ण जगत के जीवन है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ चलता है। जो कुछ ब्रह्मांड के कार्य, पेड़ पौधा, सब कुछ ऐसे सूर्य भगवान। तो इस जगदेक चक्षुषा, इस जगत के चक्षु सूर्य ने, तो जब गति करते हैं और जो देवताओं ने कार्य संभालते हैं वो भी आज उठ करके सुबह जब इस कार्य में लगते हैं तो बहुत शुभ समय के लिए उनको सारे जो इस बात को जानते हैं वेद के संस्कृति को, जो जानते हैं वैदिक संस्कृति को, ये इस दिन को सबसे शुभ दिन मानते हैं। शुरुआत के लिए देवताओं के लिए देववान फास्ट दिन के शुभारंभ तो सभी के लिए शुभ माना जाता है, दिव्यता के लिए। और भारतवर्ष में ये कृषि प्रधान देश रहा, कृषि प्रधान जो कृषियों कृषकों का किसानों का जो खेती का उपजाऊ होता है वो इसी महीना उस महीना में फसल कटता है। चाहे गेहूं करो, चाहे चाहे आपका धान करो, उसमें ये उपजाऊ का महीना है। अभी तक तो खेती बाड़ी में बिजी रहते थे, अभी उपजाऊ सब किसान भी खुश रहते हैं, कृषक लोग किसी होते हैं। और कृषक खुश होंगे तो जो कृषि निर्भर करता है गाय के ऊपर, गाय बैल के ऊपर, तो उन लोग को फुर्सत मिलेगा, अभी उनको फुर्सत मिलेगा। तो उनके लिए भी सुख के समय है, किसान के लिए सुख के समय है। तो इसलिए खेत को और खेत को उपजाऊ करने वाले गाय और बैल को, उनको भी आनंद होता है, उनको पूजा करते हैं। और क्योंकि अन्न के उपजाऊ के समय है तो इसलिए अनेक जगह पर नवान्न भक्षण होता है। नवान्न जानते हैं, नए ग्रेन खाता ना, उस पूर्णिमा को नवान्न भक्षण कहा जाता है। नए साल के नए अन्न भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तो इसलिए कई जगह पर खिचड़ी बनाया जाता है, चावल गेहूं आदि में जो अन्न से अनाज से मकर चावल खिचड़ी पोंगल ये सब वही राइस है, इसी का अन्न का ही एक एक प्रकार के प्रिपरेशन है। आप लोग के यहाँ पे तिल ये भी एक अन्न है, तिल गुड़ बनाकर करते हैं। पंजाब साइड में इस फेस्टिवल को लोहरी फेस्टिवल कहते हैं, वो आग जलाते हैं और उस तिल का भी गजक का दिक्कत चलता है हम बहुत, क्योंकि अभी ठंडी विदाई होता है, ठंडी को विदाई देने के बाद अभी गर्मी का दिन शुरू होता है। इवन इफ इंग्लिश कैलेंडर में भी उनका जो 25 दिसंबर जिसको एक्स मास कहते हैं, हम उसको बड़ा दिन कहते हैं ना, अपना भाषा में दिन बड़ा होना शुरू होता है सचमुच। तो वो लोग का कैलेंडर में थोड़ा आगे पीछे रहता है, हमारे मकर संक्रांति से दिन बड़ा होना शुरू होगा, अभी रात छोटा होगा दिन बड़ा होगा, बड़े दिन बोलते हैं उसको एक्स मास। तो ही है, तो इसी कारण से अब जब भगवान सूर्य धनु राशि से एक एक राशि में सूर्य भगवान होकर जाते हैं, धनु राशि से मकर राशि की ओर जाते हैं, तो मकर राशि के जो अधिपति हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव मकर राशि के मालिक है। तो शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, तो आज के सूर्य भगवान के रास्ते पर उनके बेटा के मकान आएगा, तो आज उनके घर में मेहमान होंगे, अपने बेटा के घर विजिट करेंगे। तो इतने दिन के बाद साल भर में अपने बेटा का घर सामने आया, उनके घर में जाएंगे, पिताजी भी खुश होंगे और बेटा भी खुश होगा, दोनों खुश हैं। तो हम लोग सब शनि ग्रह को तो खूब डरते हैं, तो शनि ग्रह के बुरी नज़र से बचने के लिए और सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए तो आज के दिन सूर्य भगवान को पूजा करना चाहिए। तो सूर्य भगवान के संक्रमण के कारण ये विशेष करके सूर्य पूजा के लिए संक्रांति विधि है, जितने प्रकार की सब भोग राग पूजा सब सूर्य भगवान के निर्दिष्ट किया जाता है। और विशेष करके जब ये मकर संक्रांति रविवार को पड़ता है तो राजयोग सम्मिलित होता है, उसमें महासिद्ध योग हो जाता है। तो आज संक्रांति रविवार को पड़ा है, हिंदी पंचांग के गणना के अनुसार 70 साल पहले इस बार एक योग हुआ था, रविवार के दिन संक्रांति आया था मकर संक्रांति। तो 70 साल के बाद फिर आज रविवार के दिन मकर संक्रांति आया है। तो आज के लिए ये विशेष राज सिद्धि योग है, जो आज के दिन सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत्र पाठ करते हैं, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं, तो उनको बहुत कुछ पुण्य प्राप्त होता है, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होता है, ये विशेष योग है। तो ये मकर संक्रांति क्योंकि इतने शुभ दिन है तो इसलिए सब शुभ क्रिया करते हैं, सभी ने हर प्रकार के दान दक्षिणा पूजा पाठ सब शुभ कार्य स्थिति में किया जाता है। और एक बहुत बड़ी घटना घटा था स्थिति में, आप जानते हैं सूर्य वंश के बहुत बड़े पराक्रमी राजा सगर थे, महाराज सगर, जो 20 के सास जन्म होते, 20 का एक नाम है गर, गर के साथ पैदा होते, उनका नाम पड़ा सगर, सगर उनका नाम पड़ा, पैजन के साथ पैदा हुए थे, उनके विमाता ने उनको पैजन खिला दिए थे लेकिन पैजन उनको कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए सगर बनकर के हुए। सगर महाराज बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी अश्वमेध यज्ञ आयोजन किए थे, और उस यज्ञ में इंद्र को डर लगा, इंद्र अपने पोस्ट पोजीशन के डर में उस यज्ञ में विघ्न करने के लिए उनके अश्व को चोरी कर लिया। तो सगर महाराज के दो पत्नी थे, सुमुखी और केशिनी, केशिनी का तो एक बेटा था और सुमुख क्या 60,000 बेटे थे, कितने थे केवल एक सेट इतना बड़े थे, दो सेकंड सेट में एक ही था, असमंजस था उनका नाम। तो और असमंजस ऐसा था कि वो पहले जन्म में एक बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, असमंजस बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो अभी उनको किस कारण से उनको फिर इस दुनिया में मनुष्य बनकर आना पड़ा, तो उनका नाम असमंजस था। वो बचपन से जाति स्मरण उनको पहले जन्म का सिद्धि से पता था, तो इसलिए वो कभी कभी खेलते खेलते बच्चे थे, वो भी राजकुमार थे, राजकुमार और बाकी मंत्री सेनापति बहुत सारे कुमारों के साथ खेलते थे अयोध्या नगरी में सरजू नदी के किनारे में, खेलते खेलते जाते थे बच्चों को उठाकर फेंकते थे पानी में, नदी में फेंकते थे, सरजू नदी बड़ा गहरा बहाव था, बह जाते थे, ऐसे डेली 5-7 लड़के को शाम तक कंप्लेन आएगा हमारा बच्चे को मरवा दिया, फेंक दिया नदी में गया भाग गया। और जिनका लड़का को पानी फेंक मर गया तो कैसे आएंगे, रो धोकर आएंगे, लेकिन राजकुमार है क्या करें, इकलौता बेटा है राजा का, दूसरे रानी का एक ही लड़का। राजा ने खूब सहा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन डेली डेली 10-5 कंप्लेन आने लगा। वो ये कंप्लेन जिसको कोई रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता। तो अंततः महाराज सगर बड़े रुष्ट हुए और उनके एक ही बेटा था दूसरी रानी का असमंजस को, उसको गाली दे करके बोलते निकलो निकल जाओ राज्य से, तू परेशान कर रखा यार, सब मार मुर देगा, तू ये क्या कर रहा है, ये खेलने को उठा के फेंक देते नदी में, ये क्या तेरा खेल, अब क्या कर, कोई उनके साथ। तो गुस्से होकर उनको देश निकाल कर दिए। जब देश निकाल किए तो उन्होंने देश से निकलते समय उन्होंने कुछ बोले नहीं, गए जा करके नदी के किनारे खड़े रहे। सारे लोग देखते थे कुमार जा रहे हैं देश से निकल करके, सभी के सामने उन्होंने ऐसे जोगो सिद्धि की, जितने लड़के को अब तक नदियों में मार दिए थे सबको बुला लाए, सबको जीवित कर दिए और अपना अपने माता पिता को लेकर जाओ, अपने बेटे को लो। साहब आश्चर्य, हरी कुमार ये तभी एक साल कहाँ रखे थे, लेके जाओ सबको, अपना अपना लड़के वापस दिए, लड़के लड़के जिसको दिए थे। तो उनके पिताजी देख करके बड़े फंस गए, ये मेरा बेटा ऐसा है, सबको मार दिया तो सबको जीवित भी ले आया, ये महाजोग शक्तिशाली है। तो उनको अब बुलाना चाह रहे थे, बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा वापस, मैं जा रहा हूँ। तो पिताजी बड़े दुखी हुए। तो उनके एक बेटा था असमंजस का, एक बेटा था जिनका नाम था अंशुमान, उनका एक बेटा था, और जो पहले पत्नी थे सागर महाराज की सुमुखी, उनके 60,000 लड़के थे। तो अंशुमान का 60,000 लड़के क्या संबंध लगेगा, अरे चाचा लगेंगे, उनके पापा का भाई लगेंगे ना, और चाचा। तो 60,000 चाचा थे और दादा एक थे, तो दादा को हेल्प करते थे अंशुमान बड़े, वो भी योग्य पुत्र थे, योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। तो जब इंद्र ने वो घोड़ा को चोरी करके ले गया, तो महाराज सगर ने बोले ये तो मेरा नाती है, छोटा सा मेरे पास रहेगा, बाकी आप 60,000 जो उनके बेटे थे ये सेठ को पूरा, बोला आप जाओ ढूंढो घोड़े ढूंढ करके लाओ। तो उनको भेज दी, वो राजकुमार बड़े शक्तिशाली थे, वो जाकर ढूंढे, 3 लोग ढूंढ गए, 60,000 कमी थे क्या नंबर, अस्त्र शस्त्र लेके ढूंढ ढांढ के इंद्र डर गया, बोला ये तो मुझे पकड़ लेंगे पिटेंगे। वो डर के मारे भाग भाग कर जा करके समुद्र किनारे भगवान कपिल जिनका जन्म स्थान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सिद्धपुर में, जिनका जन्म हुआ था माता देवभूति से, और माता जी के प्राप्ति कराने के बाद उन्होंने जा करके वहाँ पूर्व दिशा में समुद्र किनारे बैठे थे, वहीं भजन का तपस्या कर रहे थे, वहाँ तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने देखा कि कपिल भगवान यहाँ तप कर रहे हैं, और जाकर उन्हीं के पास में घोड़ा को बांध करके भाग गए, और 60,000 राजकुमार तो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते दौरान देखे घोड़ा इधर खड़ा है, सत्यजी का घोड़ा बड़ा घोड़ा था, बड़ा गाड़ी था, देख करके भाई चोरी माल जहां बरामद होता है उसे तो चोर माना जाएगा, यही तो आजकल के नियम यही है, सब समय ही नियम। तो पकड़ ली, बोले अरे ये ढोंगी बाबा जी आंख बंद कर बैठा है, चोर है, घोड़ा चोर करके वही ला, देख गाली दी, खूब गाली दी, पकड़ो मारो गाली को लेते हो, हालांकि 60,000 तो हल्ला बहुत ज्यादा साउंड हुआ। तो भगवान कपिल आंख खोले, बोले ये क्या हो गया, आंख खोल करके जैसे दृष्टि पड़ा तो 60,000 कुमार आपने आप में जल के मर गए, राख हो सीधा फट राख के ढेर, 60,000 का डेड बॉडी, बहुत बड़ा स्टॉक। आप लोग भाषा में क्या बोलते हैं राख को, आस राखी, बहुत बड़े राख के ढेर, गुजराती नहीं मिला। तो कपिल भगवान पहुंच बोले तो उनके में से वो आपने अपराध के कारण जल मरे, मैं क्या कर सकता हूँ, घोड़ा आया था तो आए नहीं, मैसेज भी नहीं आया, घोड़ा भी नहीं आए, बेटे भी नहीं आए, वो बैठे हैं सगर महाराज। तो अंततः क्या करें, तो संकल्प लेकर बैठे थे, तो
वो ताकि भेजे अंशुमान को, बोले बेटा जाओ देखो तेरे चाचा लोग कहाँ गए, बुरा भी नहीं आया वो भी नहीं आया। तो अंशुमान बड़े चतुर थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने पता लगाए, पता लगा लेके उन्हें चाचा सारों का हाल खराब है। तो इसी रास्ता में गए थे, लेकिन कोई बड़े महापुरुष के अपराध के कारण, महत अपराध के कारण उनके सब प्राप्ति हो चुके, सब जल चुके हैं, मर चुके हैं। तो उन्होंने गए इसी रास्ता पर, जिस रास्ता पर जाकर पहुंचे, और इसी स्थान का नाम भी सगर पड़ गया। सगर पुत्र ने खोद खाद करके वहां जब पता लगा लिया घोड़ा का, तो इस स्थान का नाम क्या पड़ा, सगर, इसलिए उसको सागर भी कहते हैं, सगर हुआ। तो सगर स्थान में तो जाकर जब पहुंचे, अब देखे कि राखों का बहुत बड़ा स्तूप ढेर लगा हुआ है, और घोड़ा इधर खड़ा है, और एक बाबा जी आग बंद करके अपने भजन में बैठे। तो उन्होंने अपने चाचा की तरह गलती नहीं की, वही होते सुधार वाले, वो जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, प्रार्थना की, समझ गए कि कोई नहीं है साक्षात भगवत अवतार है, इन्हीं के चरण में अपराध के कारण मेरे चाचाओं का ये हाल हुआ। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके स्तुति किए, खूब भगवत स्तुति शुरू किए कि हम कैसे आपको जान सकें, कोई देवता देवी नहीं जान सके, ऋषि मुनि नहीं जान सके, मैं मूर्ख क्या जानूंगा, हम इसी प्रकार अपने को हीन करके खूब स्तुति किए उनको, कृपा कीजिए। घोड़ा था, घोड़ा पकड़ ले जा सकते, घोड़ा नहीं लिए, उनको उस प्रसन्न किए। तो कपिल देव ने देखे आंख खोल करके, देखे कि भद्र भाव से बड़े हाथ जोड़ के विनीत भाव से उनको स्तुति कर रहा है। तो बोले क्या चाहते हैं, मैं घोड़ा ले सकूं परमिशन, लेके जाओ मेरे क्या घोड़ा से था? नहीं, आप कृपा कीजिए, ये मेरे चाचा लोग है, कुछ तो गलती किए आपके चरण में, उनका फलाफल भोग रहे हैं, अब मैं घोड़ा तो ले जा रहा हूँ, नाना जी पूछेंगे तो उनका कोई उद्धार होने का कुछ उपाय बता दीजिए मुझे, ये तो बहुत बड़े महत्व व्यतिक्रम, मर्यादा व्यतिक्रम अपराध के, जिस कारण कोई उनका उपाय है, आप तो महात्मा है महापुरुष, आप थोड़ा बता दीजिए कृपा करके। तो इस प्रकार प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान कपिल उपाय बताए उनको, अंशुमान को, बोले आपके चाचों का आप उद्धार चाहते हो, तो ये जो भक्त अपराध के कारण जिनका ऐसे दशा होता है, इस भौतिक संसार में कोई नई चीज उनको उद्धार कर ले, फिर तो उपाय बताइए ना चाहते हो। तो अभी वो पानी स्वर्ग में है, बोले वो तो दिव्य जल है, भगवत चरणादुक है, भगवत चरणादुक विष्णुपदी के नाम से, अभी तक उस जल का नाम विष्णुपदी था, विष्णु के पद धो करके ब्रह्मा जी ने रखे थे ब्रह्मा कमंडलों में, वहां से ध्रुव जी लाए थे, ध्रुव लोक से भर भर करके ला करके देवलोक पे लाया गया था, देवताओं को स्वर्ग लोक भी पहुंचा था अब तक। तो बोले जो विष्णुपदी जो जल है, वो जल अगर स्पर्श करे राग को, तब उनका उद्धार हो जाए, वो सब मुख्य प्राप्त कर लेंगे, सारे के सारे थोक में मुक्ति हो जाए। एक दो नहीं, रिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा, होलसेल में कर देंगे, लेकिन ये विष्णुपदी चलाना चाहिए। तो उन्होंने घोड़ा लेकर गया, भगवान को प्रणाम करके यज्ञ संपन्न हुआ, पिताजी नाना दादाजी को सब बताया रिपोर्ट, दादाजी यज्ञ के बड़े दुखी हुए, मेरे बेटे चले गए, मर तो गए, उनका उद्धार तो करे। तो उन्होंने तप करने बैठे विष्णुपदी को, जल को प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु के शरण भुवन जल को पाने के लिए वामन देव ने शरण ऊपर उठाए, ऊपर उनके चरण की प्रेस में वो ब्रह्मांड के छत फट गया, होल हो गया, तो कारण सागर के जल लीक किया था, भगवान के चरण धो करके वो पानी जो नीचे गिरा, ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मा जी बोले मेरे पापा के पानी धोए, चरण धोए, फटाक से अपने कमंडल में ले लिए उनको, वहीं रखे। तो ध्रुव जी को जो पता चला, ध्रुव जी ने उसको लेकर आए, ध्रुव लोक से फिर स्वर्ग लोक में आया था, इस प्रकार वही था। तो उन्होंने खूब तप किए अंशुमान, उनके बाद दिलीप के पुत्र भगीरथ, चौथा पीढ़ी में महाराज भगीरथ भी पीढ़ी तक पूर्वजों के उद्धार की तपस्या कर रहे थे, चार पीढ़ी बीत गया, एक एक कुटी में 100 साल तक, 100 साल तक त्रेता जी मतलब 10,000 साल जीते थे आयु था, इतने हजारों साल, कितने हजार साल बीत गया होगा, 3-4 पीढ़ी बीत गया। तो राख उधर पढ़ा था और विष्णुपति को लाने के लिए, तो फिर विष्णुपति चल राजी हुई इस धरती पर आने के लिए। धरती को संस्कृत भाषा में गांव बोलते हैं, क्या गांव, गाय के रूप में रहता है धरती माता, इसलिए इसको बोलते हैं गांव। तो इसी गांव को गमन की गति की जो विष्णुपति ने, तो उनका नाम पढ़ लिया गंगा, गा को गमन की गंगा करके लोग बोले गंगा जल, उनका नाम गंगा तभी पड़ी जब स्वर्ग से उतरी, इसलिए जहां जिस स्थान पर उतरी थी उस स्थान को आज भी लोग गंगा उतरी गंगोत्तरी कहते हैं। स्थान का नाम क्या है? गंगोत्तरी, गंगा जहां उतरी वही लैंडिंग डाउन किया था, लैंडिंग किया था। तो भगीरथ जी ने ये अनुसुमान से तपस्या शुरू हुआ, 4th पीढ़ी में भगीरथ महाराज ने सफल हुए उनके वंश में, और सफल हो करके गंगा जी को नीचे, गंगा जी राजी हो गई विष्णुपति रूप में, नीचे आऊंगा लेकिन बेटा भगीरथ तू इतने पीढ़ियों से मुझे तपस्या कर रहे हैं, प्रसन्न हूँ, आने के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं आऊंगी, मेरी इतने तेज धारा है मुझे कौन संभालेगा, मैं नीचे आऊंगा इतने फोर्स में, धरती में जाऊंगा वो तो गड्ढा फूल हो जाएगा, मैं नीचे चला जाऊंगा पाताल, और आपके पूर्वजों के पास कैसे जाऊंगा, कोई टिकने वाला हो ना, कोई कंटेनर हो जहां पर सस्टेन करे मुझे, फिर लेके जाए आगे, कौन टिकाएगा मुझे इतने तेज भाव स्रोत को, कौन टिकाएगा, तो उसका कोई व्यवस्था करो। तो महाराज भगीरथ चिंता पड़ गए, बोले क्या करूं, कैसी व्यवस्था करूं, राज्य की धारा को कौन धारण कर पाएगा। इधर उधर कंसल्ट किए, कई लोग बोले उनके, अरे महादेव के पास जाओ वो काम कर सकते हैं आपका। तो अभी गंगा जी की तपस्या तो 4 पीढ़ी से किए थे, उनके सफल हुए, गंगा जी प्रसन्न हुई, अब भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ा, जाकर एक कंटेनर बने जाकर शंकर जी को, शंकर जी जल्दी प्रसन्न हुआ, आशुतोष है ना, और थोड़ा जल्दी पट गए। तो बोले बेटा 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 क्या चाहिए ना बाबा जी, चाहिए क्या, गंगा जी राजी हुई है, आप थोड़ा उनको संभाल लें, मैं उनको लेकर जाऊँ, थोड़ा उसको नीचे ना चले जाए, उनको थोड़ा सस्टेन करना है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो मैं मदद कर लूंगा, संभाल लेंगे। तो खुश होकर जाए गंगा देवी की बोली, बोले जाकर भगीरथ महाराज जैसे भगवान शंकर राजी हुए हैं। तो गंगा जी बोले शंकर भगवान है क्या पास, उनके पास तो घर ना घाटी को फ्लैट नहीं, कोठी नहीं, कुछ नहीं, बर्तन खर्द लोटा वोटा कुछ नहीं रखते, उनके पास है क्या, कैसे धारण करेंगे, एक तो चरम पहनते हैं, बेल्ट भी नहीं लगाते, बेल्ट भी जिंदा बेल्ट लगाते हैं, मालूम है, लिविंग बेल्ट, हाँ सांप पहनते हैं, और कोई कपड़ा लगता कुछ भी नहीं है, उनको है क्या बर्तन, कैसे रखेंगे मुझे, किसी की पूछो जाकर को, यही बात बोल दी इसी की, क्या है कैसे मिलते, मेरे स्रोत के बारे में पता है भगीरथ महाराज, अब तक भी काम नहीं बनता, फिर वापस गए जाकर, फिर महादेव के पास गए जाकर, बोले अब देवदेव महादेव ऐसे ऐसे विष्णुपति गंगा देवी ऐसे ऐसे बोलती है, और क्या गंगा के साहस, उनका विश्वास नहीं हो, डाउट है, शंका करते कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जाके बोलो उनका जितने ताकत है जितने बल है सारे लगा करके पूरी पावर से आए, मैं देखता हूं। वो जाकर बोला, बोला अरे है क्या, मैं पावर दिखाऊंगा लेकिन वो क्या करेगा, क्या है कैसे दिखाएंगे, फिर आकर पूछा बोले आपको बस क्या है कैसे दिखाएंगे, अरे कुछ नहीं मैं इस सर के ऊपर ले लूंगा, मेरे पास कोई बर्तन वर्तन है ही नहीं, मैं जटा में ले लूंगा उसको। भागीरथ भी विश्वास नहीं कर रहे थे, जाकर शंकर भगवान बता जाए गंगा जी, गंगा जी हंसने लगी, बोले तो बोलो संभालेंगे मैं आ रहा हूँ, तो देखते हैं उनका भी इतने साहस, मुझे जटा में लेना चाहते सर के ऊपर कोई बर्तन नहीं कुछ नहीं व्यवस्था नहीं, तो लेकिन चैलेंज हो चुका था। तो गंगा जी ने अपने सुपर स्पीड लेकर के आई, ऊपर से पूरी वेग से गिरी स्वर्गलोक से नीचे, और नीचे भगवान हिमालय के ऊपर खड़े हो गए, आपने जटा खोल दी, आजा गंगा जी पूरे स्रोत से आई, अमाप जल राशि इतने असीम वेग से आए, आकर के जटा में प्रवेश कर गया। तो शंकर जी के जटा इतने छोटा मोटा था नहीं, इसी में गई। भगीरथ महाराज नीचे खड़े हैं, वो भाई की जटा गिला करके पानी तो नीचे टपकेगा ना, तो नीचे खड़े पानी नीचे आए, 6 महीना बीत गया पानी ना आए, यहां से पानी गिरा, सारे पानी अंदर चला गया। वो बाजू में भी अभी सूखा है, बाजू बाल था ना सब सूखा था। अब फिर खड़ा होकर तपस्या के, हे देवी आप तो स्वर्ग से उतार के लाई नीचे, फिर कहां चली गई? गंगा जी अंदर से बोले, हे भगीरथ कुमार ट्रैफिक जाम, रास्ता नहीं मिल रहा, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ये कितने हाई स्पीड में घूम रहा हूँ, पता नहीं जटा कितने लंबा चौड़ा है, मिल नहीं रहा, मैं तो 6 महीने से हाई स्पीड में चल रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने के लिए। अब गंगा जी का सारे मान मर्दन हो चुकी थी, वो समझ रही थी शंकर जी की महिमा को नहीं समझ रही थी। शंकर जी ने उनके जटा में ऐसे संभाल लिए, वो घूमती 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 चक्कर खा करके बाहर निकलने के रास्ता ना मिले। तब वही प्रार्थना को शंकर जी को मेरे ओर से माफी मांग लो यार, को मैं रिलीज कर दे यहाँ से, निकलूं तो सही, निकल ही नहीं पा रहा हूं मैंने। तो फिर दोबारा भगीरथ महाराज ने शंकर जी को प्रसन्न किए, बोले प्रभु गंगा जी मान गई हार अपनी, अब कृपा करके मेरे पूर्वज, मैं बूढ़ा हो गया पता नहीं और कुछ ना लग जाए, उनको मैं उद्धार करूं, कम से कम इतने तो कृपा किए, थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए। तो भगवान शंकर ने भगीरथ महाराज को प्रसन्न होकर के अपने जटा से एक बाल, समझते ना आप बाल बोलते ना कैसे बोलते, एक बाल उखाड़ दिया, लो जटा से एक बाल उखाड़ दिए, एक बाल से कुछ पानी लीक किया, कितने मोटा धारा आया, एक बाल का जितने लीक पानी जितना थोड़ा पिचकारी करके पानी आया, एक बाल के लीक जितना वही गंगा की धारा चल रहा। शंकर जी के जटा का वन है इसी के पानी, वो 4 पिचकारी में 4 धारा में चला गया। चक्षु भद्रा अलकनंदा मंदाकिनी अलग अलग धारा बन गया सब, एक बाल के जो पानी लीकेज वो इतने बन गया, उसमें हम डर बह जाते मर जाते। शंकर जी के एक बाल के बराबर के पानी है, तो इसी को भगीरथ महाराज ने लेकर के आए, आगे आगे चले, धारा पीछे पीछे चल रहे थे। अद्भुत अद्भुत घटना लेकर के आए, आ करके सागर का स्थान जहाँ कपिल भगवान बैठे जा राख पड़ा था वो अभी था 150-200 किलोमीटर रास्ता में, एक ऋषि बैठे थे, इनका नाम था चान्नो ऋषि, वो बैठे थे। भगीरथ महाराज जल्दी जल्दी जा रहे हैं, आगे उनके घोड़े रथ चल रहा है, पीछे गंगा जी अपने स्रोत से चल रही है, सारे पहाड़ बन होकर पीछे पीछे। तो भगीरथ आगे चले गए, पीछे गंगा जी जा रहे थे, वो सुबह सुबह का समय था और जन्मुनि बैठे थे अपना कुछ आंख बंद करके, अपने सारे आचमन पात्री अपने फूल फूल सब अपना पूजा सरंजाम रखकर बैठे थे। गंगा जी गए, उनको पता नहीं सुबह धाकर चले गए, वो बोले कपड़ा किसी गिला हुआ, देखे सारे आसमान भर गया, सब कुछ भर गया, फूल भर गया, बोले अरे पानी तो था नहीं, तो पानी कहाँ से गिला हो गया? तो बोले सर बर्तन बर्तन धो दिया, वो गिला हो गया। जानू मुनि गुस्से में आकर के सारे पानी के हाथ में आसमान पहले पी लिए, ऐसी ऐसी महा महाविभूति हुई, पूरे गंगा के जल को धोख पी लिए, कोई ग्लास में उठा कर नहीं, हाथ में चल में उठा कर पी लिए। लोग भगीरथ महाराज जाकर पीछे देखते हैं, सूखा धूल उड़ रहा है, पीछे तो गंगा की धारा आ रहा था, ये क्या हो गया? अब गाड़ी रिटर्न किए, ब्याग किए, फिर चले भाई, सूखा उड़ रहा है, तो कहां तक देखे कि मुनि बैठे, पूरा पेट इतना बड़ा है। बोले मैं जाते समय तो ठीक ठाक चेहरा था, इतने बड़े पेट बड़े। आग बोले क्या हो गया? आके बोले महाराज धारा आ रहा था पानी का, गंगा जी के धारा में तो धारा ना, अच्छा आप लेके जा रहा था क्या? हाँ मुझे नहीं बताया, मेरा कपड़ा गीला हो गया, मैं तो भीग गया। अरे राम 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 राम, 4 पीढ़ी तप करके लाया था, कितने नाटक कितने कितने तकलीफ करके, कई बार उनको प्रश्न करो उनको प्रश्न करो, वो करो वो करो करकार के लाया था, आप भी और 150 किलोमीटर है, हमारे पूर्वजों का उद्धार है, रोने लगा हाथ जोड़कर, कुछ तो करो। तो जानो मुनि उन्होंने दयालु है, कृपा के बोले देखो मैं तो चलो मैं तो गुस्सा आया पी गया, लेकिन मैं चाहता हूँ तो मैं उद्धार करने के लिए, मैं क्या करूँ, पानी तो पेट में चला गया। अब दो आउटपुट है, दो गेट है, एक तो नीचे अपर गेट एक डाउन गेट, अपर गेट में करो तो उल्टी होगा, उल्टी आपके सही काम में लगेगा नहीं, ये तो क्या कंटामिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूषित हो जाएगा। तो उल्टी करने से आपके फिर आपके पूर्वजों के उद्धार काम में नहीं लगेगा। अगर डाउन गेट में छोड़ो पिसा को रुक रहा है, दोनों ओर से काम नहीं बनेगा, पेट तो ऐसे चला गया, पानी निकालने के लिए दोनों ही गेट है, दोनों गेट से दूषित हो जाएगा, आपके काम नहीं चलेगा। वो तो फिर रोने लगा, वो अब क्या करो ना, देखो फिर कोई तीसरा उपाय निकालते हैं। तो आपने अस्त्र ला करके अपने जांग को फाड़ डाले, पीछे निकाल दिए गंगा जी को, सारे रिलीज कर दिए वहां से गंगा के धारा। तो उस दिन से उसी जगह से गंगा का नाम पढ़ करके जाह्नवी हो गया, जाह्नवी के पुत्र के रूप में जाह्नवी कहते हैं। तो जाह्नवी की धारा को लेकर के भगीरथ महाराज फिर भी गए और जा करके आज की तिथि के दिन उन्होंने राख को स्पर्श किया था वो जल, तो सारे को सारे 60,000 सगर पुत्र होलसेल में स्वर्ग प्राप्ति हो गए। तो क्योंकि अभी तक नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऊपर जाएंगे किसे, दरवाजा बंद था, अभी दरवाजा खुला था, गेट खुला है, अभी पानी स्पर्श कराए गंगा जल स्पर्श हुआ, तो सारे को उद्धार हो गया। सोचने लायक बात है, वो जले थे कब, कई हजारों साल पहले, कई हजारों साल पहले जल करके राख पड़ा था, भस्म पड़ा हुआ था, कई हजारों साल के बाद में गंगा के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया। तो इसलिए गंगा जल को साधारण मसा उनका प्रभाव है। तो इसको उत्तरायण में आज की तिथि में भगीरथ ने गंगा जी को ला करके अपने पूर्वजों के उद्धार किए थे। इसलिए यहाँ भी आज बहुत लाखों लोग जाएंगे स्नान करने के लिए, गंगा सागर मेला होता है आज, गंगा जी में सागर में गंगा जी यहाँ मिला है, वही सागर गंगा सागर स्थान है कपिल भगवान के, उसी स्थान में उनका उद्धार हुआ था। इसलिए भारतवर्ष से अनेक जगहों से लाखों लोग श्रद्धालु जाएंगे, वह स्नान करके स्नान करते हैं, बहुत बड़ी मेला लगता है वहाँ। केवल वहाँ नहीं मेला लगता है, गंगा की महिमा विश्व प्रसिद्ध हो गया कि गंगा की धारा ऐसा है, राख को भी स्पर्श कर ले, कितने पुराना उनका उद्धार हो जाए, और हम जिंदगी को छू ले तो फिर क्या हो, पता पाप ताप तो ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए आज के दिन गंगा जी के महिमा श्रवण के, जहां जहां गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जहां सब पवित्र नदी है, लोग वहां वहां इस तिथि को फायदा उठाने के लिए स्नान करते हैं। स्नान की वहां महिमा है, आज के दिन मेला लगता है स्नान के लिए। अब जहां जहां देखो, जहां गंगा आदि के घाट के आप, यहाँ अभी हम गए थे नर्मदा स्नान, नर्मदा के किनारे है, पानी तो वही है, पवित्र जल, सात पवित्र नदी भारतवर्ष में है, इसमें नर्मदा एक है, तो वहां भी स्नान। तो आज की तिथि में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देना ये बड़े प्रसिद्ध है। और जब भगवान कृष्ण के जन्म नहीं हुआ था, उनके माता पिता नंद महाराज और माता जसमती, उनके कोई संतान नहीं हो रहे थे, उम्र बड़ा हो गया है, तो उनको सांडिल्य मुनि बताए कि आज के देवताओं के दिन खुलता है, देवताओं को प्रसन्न कीजिए और आपके देवादिदेव पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तो आज के तिथि से नंद और जसोदा संकल्प करके व्रत धारण किए थे तपस्या के पुत्र प्राप्त के लिए, तो उनकी कामना सफल हुआ, कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए। तो इसलिए भी सारे लोग कृष्ण भक्त भी इस तिथि को बड़े गौर से मानते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें भी करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सीजन के अनुसार ठंडी के सीजन बीतता है, गर्मी के सीजन आता है, तो ठंडी को टाटा बाय बाय करने के लिए कोई कई प्रकार के जलाते हैं, आग स्तूप करके जलाते हैं, तो उसको लोहरी कहो या कैसे कहो, आग जलाने जलाते हैं, और गर्मी के आइटम खाते हैं, गुड़ तिल ये सब है ना, घी ये सब जो गरिष्ठ पदार्थ आज के दिन खाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं, सभी ने आज के दिन को ये विशेष त्यौहार उत्सव करके मानते हैं, क्योंकि देवताओं के दिन शुरू होता है, सारे शुभ कार्य भी शुरू होता है। गंगा जी आज ही अपने प्रभाव से कई पीढ़ियों को उद्धार किया था और आज से ही तपस्या आगे, तो इसलिए कई शुभ तिथि का समावेश के साथ इस भगवान सूर्य अपने बेटे के घर जा रहे हैं संक्रमण किए। आज से दिन शुरू होगा देवजान, तो इसी समस्त शुभ क्रिया के समन्वय में इस मकर संक्रांति शुरुआत होता है। और एक विशेष घटना हुआ था, आप सब सुने होंगे महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म, उन्होंने चार सेनापति हुए कौरव पक्ष में, एक नंबर के सेनापति पितामह भीष्म थे। 10 दिन तक तो वही रहे लड़े, बाकी 1 वीक में 3-4 हो गए रिटायर, लेकिन 10 दिन तक वो थे। 10वां दिन में दोपहर तक अर्जुन के बाण में तीखे बाण से उन्होंने रथ से गिर पड़े, लेकिन जमीन में नहीं गिरे, वो बाण के ऊपर टिके रहे, सर सज्जा पर रहे, पूरे शरीर में हर इंच इंच में तीखा बाण फंसा हुआ था, फंसा हुआ था तीखा बाण। इस बाण के नोक की सैया पर विश्व पितामह सोते रहे, लेकिन उनको एक वरदान था उनके पिताजी की तरफ से, बेटा तू जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरेगा, इच्छा मृत्यु के वर था, तो इसलिए बाणों की सैया पर लेटे पर भी वो नहीं मरना चाहते थे। क्यों मरना नहीं चाहते थे भाई, तकलीफ इतना होता है कौन जीने चाहेगा। आप और हम होते, आप और हमारा तो दूसरा बाण क्या है ज्यादा, एक कांटा आधा इंच का भी, 1 इंच का भी अगर घुस जाए, है ना, नहीं वो भी वो बबूल का पेड़ के कांटा एक आधा इंच फंस जाए और 2-1 दिन ना निकले, थोड़ा वो पक जाए, तो कैसे लगता है टेस्ट एक्सपीरियंस किसका होगा ना, यहाँ जो कहते हैं कि फंसा होगा किसका, है ना। अगर 10-5 कांटा फंस जाए तो, अगर 1.5-2 इंच वाला घुस जाए तो ICU, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। यू सी मी वही होगा, ये हमारे दशा है। और थोड़ा अनुमान लगाओ पितामह भीष्म का पूरे शरीर में आपाद मस्तक हर इंच में, 1 इंच 1.5 इंच नहीं, पूरे शरीर में आर पार था और तीखे नोकीले बाण था जो निकल नहीं सकता था, पूरे आर पार था। और 58 दिन तक 58 डेज पड़े रहे उसके ऊपर, सड़ गया था, कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था उनके पास, कोई मेडिसिन वाले नर्स फर्स कोई नहीं आए थे, युद्ध तक खत्म हो गया 1 हफ्ता के अंदर। भीष्म पितामह जब गिरे आफ्टर 1 वीक सब मर गए, सब खत्म हो गए, हजारों हजारों लाश पड़े रहे, मुंशी पार्टी भी एक्टिव नहीं था कि उठाया गया, इतने कम थोड़ी थे, हजारों हजारों कटे फटे सिर, कोई चित्कार कर रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई मर चुके हैं, घोड़े हाथी रथ रथी कितने पड़े मरे पड़े हैं, उन्हीं के बीच में लाखों की लाश के बीच में, अब लाश अगर कहीं 1-1.5 बड़ी कहीं पड़ा होगा दिन में आप देख लिए, शाम के समय आप जाएंगे इस रास्ता में, हम नहीं जाते 1-1.5 बड़ी शाम के समय नहीं जाएंगे। अब अंदाज लगाइए लाखों की संख्या में 1.5 बड़ी पड़ा होगा और कई तो अभी मरने ही, अभी चित्कार करते मरते होंगे, मुहूर्त अवस्था में है उनके मृत्यु समय का जो छटपटाहट चंद्रणा वो भी करते होंगे, और ऐसे 1.5 बड़ी को जहां इकट्ठा पड़े होंगे मरघट विशाल, उसमें कौन आता होगा, रात में कोई नहीं मनुष्य था, सब चले गए थे, कौन आता होगा, अरे सियार भीत कुत्ते भूत प्रेत पिशाच यही तो आते हैं, उनको आएगा, उन्हीं लोग के बीच में अकेले पितामह भीष्म सोए। हम तो डर के मारे मर ही जाते, मरने का वो इच्छा करने का जरूरत नहीं था, बिना इच्छा से मर जाते, हार्ट फेल हो ही जाता, हार्ट ब्रेन सब फेल हो जाता डर के मारे। और डर भी ना हो, कितने उत्कंठ दुर्गंध, कितने उत्कंठ विष का क्या भयानक सीन होगा, जस्ट इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कितने विकट भयानक दृश्य होगा। इस दृश्य में एक दिन दो दिन नहीं, एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं, दो महीने तक पड़े रहे। कोई खान पान नहीं, केवल पानी पीते थे, केवल पानी पी करके शरीर में एक ड्रॉप, एक बिंदु मात्र भी ब्लड नहीं था, सारे ब्लड निकल गया था, काया कल्प हो गया था, मरने के लायक 100% का बिल्कुल मर नहीं रहने का इच्छा नहीं था उनका मरने की। हम लोग तो 20 खाकर मर जाते हैं। अगर वो इतने कष्ट, भाव रे भाव, जहां देखो हाथ हिल नहीं सकते हैं, घुसा हुआ यहां घुसा है, सर में, पैर में, पेट में, जहां देखो पूरा आर पार फंसा हुआ है, बाण सड़ गया है, सड़ करके बस भी निकल रहा है, हिल डोल नहीं सकते, बचेंगे? हे प्रभु, एक सेकंड में मर जाऊं, जीवन नहीं छोड़ा तो कोई कुछ भजन खा के मर जाऊं, सुसाइड कर डालू। लेकिन उनको तो कुछ नहीं करना पड़ता होता, इच्छा मात्र से मर सकते थे, फिर भी क्यों नहीं मरते थे? इतने भयानक दुख, इतने रात, इतने दिन, इतने दुर्गंध, इतने विभीषिका में क्यों जीते रहे उन्होंने? इसके दो कारण है कि वो देखे कि मेरे पास वरदान है, जब चाहूं तो मरूं, मरने के लिए तो सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये मरने में ही सिद्धि हो जाता है। इसी को साधु जोगी लोग कहते हैं, जो मरने का कला जानता है उनके जीवन सफल है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, साधन करो, भजन करो, मरते जान ले भाई। आप खूब साधन भजन करो, कोई मूल्य नहीं उसका। अगर फाइनल एग्जाम में फेल हो गया तो मतलब कितने कोचिंग क्लास किया, खूब ट्यूशन लिया, खूब तैयारी किया, रात दो दो बजे तक पढ़ा, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, फेल हो गया, कोई मतलब का? तो दिस इज दी फाइनल एग्जाम, डेथ इज सभी के लिए अंतिम इम्तिहान, अंतिम परीक्षा है मृत्यु। कैसे मृत्यु का सामना करना होता है, एक कला अगर हम सीख ले, अंते जो मति सो गति, भगवान भी कहते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कड़े वरम, जो अंत काल में मुझे चिंतन करके शरीर छोड़ता है वो मेरे पास यही फाइनल। तो अंतिम समय को कैसे करना है, अंत कैसे होना है, कैसे मरना है, तो इसलिए विषम पिता में मरने के समय को इसे मिस यूज नहीं करना चाहते थे। बड़े बड़े जोगी मरने के लिए प्रयास करते हैं, किस समय मरूं? तो इसलिए जोगेश्वर कृष्ण के महाभक्त भीष्म ने मरना नहीं चाहते, बोले सब चले गए लेकिन मैं यहीं भी भजन करते रहूंगा, जब तक मेरे प्राणेश्वर, मेरे इष्ट देव मुझे दर्शन ना दें, उन्हीं को दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे मरना ही सफल हो जाएगा। तो इसलिए वहीं बैठ करके इतने दुख सह करके भगवत भजन कर रहे। सचमुच दुख में ही भजन होता है, सुख में नहीं होता, कहावत भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख काय को। तो इसीलिए टेंशन आने से जो परीक्षा आता है तब परीक्षा मंदिर में आएंगे दंडवत करने के लिए, मुसीबत आने से भगवान ध्यान आते, आप जो सुख आगे भूल जाते चलता है सब ठीक। तो इसलिए इतने महा दुख यंत्रणा में रह करके भगवान को विकल पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान भी अपने सारे प्रोग्राम बातिल करके गाड़ी में बैठ चुके थे, रिजर्वेशन हो चुका था द्वारका जाने के लिए, गए नहीं, प्रोग्राम कैंसिल, वापस आए, वापस आ करके सारे पांडवों को साथ में लेकर के वही मरघट में आए जहां पितामह बैठे थे। वो तो जा नहीं सकते राजभवन में, तो इसी हालत में पड़े थे, उन्हीं के पास आना पड़ा, सारे पांडव को लेकर के कृष्ण ने आए, क्योंकि भीष्म पितामह युधिष्ठिर रो रहे थे, वो बोले मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं इतने पापी हूँ, इतने कितने लोगों को मर्डर करवा दिया, झूठ मूठ में राज्य के लिए, लड़ाई से पहले अर्जुन रो रहे थे, लड़ाई के बाद युधिष्ठिर महाराज रोए, लेकिन अर्जुन को तो गीता बोलकर समझा दिए थे, उनको कोई गीता काम नहीं कर रहा था, कोई डोज काम नहीं कर रहा था, जितने ऋषि मुनि व्यासदेव तक आकर समझे, कृष्ण ही खुद समझाए, ना समझे, रो रहे थे, ना नहीं मैं नहीं राजा बनूंगा, इतने वहां अहित काम किया, इतने पाप किया। तो अंततः कृष्ण समझे कि भैया दृष्टि अगर दादाजी बोलेंगे पितामह, वो बोलने तो मान जाओ, मैं जानता हूँ वो ऐसे नहीं, आप लोग तो ऐसे ऐसे उनकी बात हो रही। ये सब कृष्ण का प्लानिंग था, कृष्ण चाहे इसे न इसने, वो बाहर से समझा रहे थे, अंदर से वोल्टेज इसे डाउन करके रखा कर, इसे ना समझे बोल्ट कर दूसरे कैसे समझेंगे। तो ना समझ कर सबको लेकर दादाजी के पास गए, दादाजी की बुरी हालत था, जैसे पता चला दुनिया में कभी गुजरात नवभर टाइम से एडवर्टाइज नहीं दिया गया था कि जा रहे हैं उनसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन कैसे पता चल गया, इतने तेजी से मैसेज फैल गया, पूरे संसार के जितने विद्वान पुरुष थे, जितने बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि थे, सब सशिष्य अपने मंडली के साथ बिना रिजर्वेशन में दौड़ कर आए, डब्ल्यूटी में आए। आप बताओ ये ऐसा कोई टाइल लगा हुआ हल थोड़ी था, कैसा जगह था वो जहां पर मीटिंग होगा, महाश्मशान, 2 महीने से सड़ा हुआ डेड बॉडी पड़ा हुआ, कितने दुर्गंध होता होगा, कैसे अनक्लीन प्लेस होता होगा, 2 महीने से कोई गया ही नहीं, जो हजार लाखों लोग जान मर के सड़े हैं, इसी जगह पर वहीं लेटे हुए थे, वहीं पर गए और वहीं पर लाखों बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि आए, उनके लिए कोई आसन नहीं, चटाई नहीं बिछाया था, कोई आसन नहीं डाला था, कि कोई व्यवस्था नहीं था, वो अपने आप अपना अपना आसन लेकर बैठ गए, कहीं खड़े रह कहीं बैठ गए, अपने अपने आर से हम सुनेंगे, साउंड सिस्टम ही नहीं था, बैठ गए, इतने उत्साहित थे पितामह भीष्म से उपदेश सुनने के लिए, सारे जगत से लोग दौड़ कर आए, आके बैठ करके अब जब सुनने के लिए तैयार हो गए, तो सभी को देख करके भीष्म पितामह देख रहे थे, आंख से देख रहे थे, लेकिन बोलने के लिए शक्ति नहीं था, 2 महीने से पानी पी रहे थे, कुछ नहीं था, देख करके हाथ उठाकर प्रणाम भी नहीं कर सकते, बोल करके कुछ बोल भी नहीं सकते, केवल आंख से धार धार आंसू निकला, ये आंसू से स्वागत किए उनको, और उनके पुत्र युधिष्ठिर आदि सामने आकर खड़े रहे, आंख से इशारा कर रहे थे, बेटा आयो मेरे पास, मैं देखा रोता हूं क्या करूं, बोलने की शक्ति नहीं थी। भगवान कृष्ण पास में गए, जा करके हाथ रख दिए सर के ऊपर, जैसे स्विच ऑन करने से लाइट जल उठता है, जैसे स्पर्श किए ऐसे सारे शरीर में शक्ति संचारित हो गया, अब बोलना शुरू किया, कनेक्शन कर दे। तो युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देते गए, बड़े लंबा क्लास चला, भीष्म पर्व सबसे बड़ा पर्व है महाभारत, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, इतने बड़े लंबे आलोचना डिस्कशन के बाद में वो करते गए वेट कर रहे थे इसी समय को, कब उत्तरायण आएगा, मैं शरीर छोड़ूंगा, प्रभु मेरे सामने विद्यमान है, देखते 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 वो समय भी आया, सूर्य भगवान ने धनु राशि से मकर राशि को संक्रमण करने लगे, जब 14 जनवरी जब आने लगा, तब पितामह भीष्म धीरे 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 वही महावीर पुरुष जो संपूर्ण जगत में महाभारत के महारथी के रूप में माना गए थे, वो आज भाषण देते 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 उनका वाणी रुक गया, बंद हो गया, रोते रोते हाथ ऐसे करके शांत हो गए, भगवान को देखते देखते उनको स्तुति करने लगे, भगवान को स्तुति किए, अंतिम इच्छा करके भगवान को सामने देखते हुए सारे ऋषि मुनि बहुत भक्त पांडव भगवान कृष्ण के सामने आपने अंतिम गति प्राप्त की, उनके सामने वो जो आपने प्रवचन बंद करके मरने का प्रक्रिया भगवत स्तुति शुरू हुआ था वो आज के दिन से किए थे, इस उत्तरायण से शुरू किया भगवत स्तुति। इसके पीछे 2 प्रकार के मतामत होता है, बोलेंगे विश्व पितामह तो कोई छोटे मोटे भक्त तो थे ही नहीं, वो तो महाजन है, वो तो प्रकांड भगवत ज्ञाता बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त के लिए भी इतने कष्ट सह करके इतना दिन तक पड़े रहे, उत्तरायण आएगा कि उत्तरायण काल में नहीं मरते तो भक्त लोग तो कभी भी शरीर छोड़ते हैं, उस उत्तरायण के लिए थोड़ी करते हैं, ऐसा क्यों, बोले नहीं अलग प्रकार मतामत देते हैं कि वो असली उत्तरायण कुछ अपेक्षा करते थे। उत्तरायण कौन था? बोले एक तो उत्तरायण ये भी तो था, इस काल के लिए अपेक्षा तो किए थे, उसका भी बताएंगे रहस्य क्या है। लेकिन दूसरा उत्तरायण उत्तरायण कहते हैं जो उत्तरा देवी के अयन में प्रवेश करने वाले उत्तरायण। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा देवी, और उनके पेट में कौन प्रवेश किए थे? अरे नहीं, परीक्षित मर गया था उसे बचाने के लिए, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उनको बचाने के लिए भगवान ने घुस गए थे उनके पेट में, उत्तरा की गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को बचाए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा था उत्तरायण। इस उत्तरायण को आने वाला था, इस उत्तरायण जब आ गए तब बोले हमारा काम बना। और दूसरी सही में उत्तरायण को अपेक्षा कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो देवता थे, ये दियो नामक वसु थे। विष्णु ने आपने देवलोक में जाना था अपने पोस्ट में, वो तो अभिशप्त होकर आए थे, वशिष्ठ के द्वारा अभिशप्त थे इसीलिए उन्होंने आए थे, नहीं तो ब्रह्मा जी के अभिष में अभिशप्त थे, वसु थे वो, तो इसीलिए वो जाएंगे। लेकिन जाने के अभी तो रात है, खिड़की दरवाजा बंद है, इसलिए वेट कर रहे थे। बोले तो दरवाजा खोले में जाऊँ, दरवाजा खोलेगा, दिन का समय हुआ, आज जब दिन दरवाजा खोला तो आज से फिर जाने के लिए प्रक्रिया की स्तुति करके, अभी अष्टमी की तिथि की भीष्माष्टमी होगा, ये आठ दिन भगवान की स्तुति किए, उसके बाद इस प्रकार के भी उत्तरायण में भीष्म पारायण के लिए ये बहुत बड़ा भागवत में इस संक्रमण विष्णु पितामह लिखे कि सूर्य उत्तर की ओर उत्तरायण किए हैं, उत्तर की ओर दिशा की ओर यात्रा किए, तब ये समय में देवलोक के दरवाजा सब खुला खोल गया है, द्वार उन्मुक्त है, अभी मुझे जाने दो। तब भगवान को सामने रख करके स्तुति किए, बड़े सुंदर स्तुति है भीष्म स्तुति भागवत में, स्तुति करके फिर विष्णुदेव ने अपने अंतिम गति अंतिम प्रयाण किए दिव्यलोक में। तो इस प्रकार अनेक अनेक शुभ कार्य से अनेक अनेक महान मुक्तात्माओं ऋषि मुनियों का चर्चित सेवित पूजित तिथि इस संक्रमण तिथि है, भगवान सूर्य के जो ट्रांसफर एक राज से दूसरे राज से गए और देवताओं के रात से दिन हुआ, इसलिए सचमुच दिन में जैसे सब उठ करके खेलते हैं कूदते हैं शुभ करते हैं एक दूसरे को बोलते हैं, रात को तो सो जाते हैं, एक दूसरे से उठ करके सुबह मिलते हैं मिलते हैं। तो इसलिए ये सभी को शुभ समय के लिए दान देते हैं, बधाई देते हैं, आह्वान करते हैं, और देवताओं उच्च लोक में सब वहाँ भी दिन हो गया, सब एक्टिवेट शुरू हुए, तो इसलिए देवताओं को ग्रीटिंग्स करने के लिए उच्च उच्च के लिए हम पतंग छोड़ते हैं, है ना नहीं? हाँ, उच्च गति के लिए उच्च लोक के लिए इशारा है। इस प्रकार नाना प्रकार के सुख शुभ प्रकार की क्रिया करके इसको संक्रांति को बिताते हैं, लेकिन इस सारे प्रकार के क्रिया के मूल जो है वो है भगवत उपासना। और विशेष करके हम जैसे कलयुगी लोगों के पास तो देयर इज नो ऑप्शन, और कोई उपाय तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई पवित्रता है, ना तो उम्र है, ना तो कोई ज्ञान है, ना गरिम है सामर्थ्य, गुड फॉर नथिंग। तो विचारों के लिए भगवान ने इसलिए सारे छूट दिए, बोले तुम्हारे लिए क्या करे, लो कोई नियम नहीं रेगुलेशन तो कर ही नहीं पाएगा, छोड़ मेरे नाम ही करो। तो इसलिए कलिजुग में एकमात्र नाम ही आधार है, एकमात्र ही उपाय है। तो इसलिए आज के इस पवित्र तिथि में हर प्रकार से पवित्र होकर के तन मन धन को पवित्र करेंगे, मन पवित्र होता है भगवत भजन से, तन पवित्र होता है स्नान से, धन पवित्र होता है दान से, ये तन मन धन को ये तीन उपाय से पवित्रकरण करना होता है। पवित्रकरण करके और परम पवित्रम भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन करना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा, इससे कल्याण होगा। तो आप लोग सभी को विशेष विशेष बधाई है मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, और साफ उत्तरायण तिथि में आप लोग कम से कम आए यहाँ, गौ माता के दर्शन किए, गौ पूजा किए। भगवान के सबसे प्यारी गौ माता हैं, गौ हैं जिसमें सारे देवताओं के निवास हैं, उनको अपरिक्रमा पूजा उनको भी खिलाए, भले साल में एक बार हो या दो बार लेकिन आए। और उसके साथ साथ हमारे कलयुग के अधिदेव श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धाम मूर्ति विराजमान, साथ साथ में कलिपावन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के, उनके भी आप श्रृंगार दर्शन प्राप्त किए और उनके बारे में सुनने के। और जब अंतिम कोई भी फेस्टिवल का एंड तो प्रसाद में होता ही है, वो तो मिलेगा ना, कहा हाँ मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि नहीं तो फेस्टिवल एंड नहीं होता। लेकिन प्रसाद खाने से पहले, खाने के बाद हम घर चले जाएंगे, अपना कल्याण करने के लिए 2-5 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन कर लेना चाहिए। इसी से ही कंप्लीट का कल्याण कंक्लूड होता है। उसके बाद भरपेट भोजन, तभी हो गया आरती पूरा, अब तक कल को प्रसादी महाप्रसाद गोविंद ही बाकी रह गया, उसके लिए तो सब तैयार है। तो इसके पहले अपने कल्याण के लिए, और मकर संक्रांति का विशेष इस तिथि का, शुभ तिथि का विशेष उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए सभी लोग खून करके, जिसका जितना वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम दे करके और ताली बजा करके, नाच करके, किसी भी प्रकार से कीर्तन करने में भाग लीजिए। 5 मिनट कर लीजिए, इसी में ही सारे निकल जाएगा। ऐसे कहावत है कि जैसे हम लोग अनेक जन्म से खूब पाप करते करते आए हैं, तो करते भी रहे, पहले नहीं करते थे, आज भी करते हैं, आज भी किए होंगे, तो इतने पाप इस शरीर में, पाप के वृक्ष में इतने पाप पक्षी बैठे हुए हैं, तो उसको निकल नहीं रहे अब। तो इसलिए जैसे कोई पेड़ के नीचे अब जा, पेड़ में बहुत सारी चिड़िया बैठे होंगे, ताली बजाने से, शब्द करने से चिड़िया उड़ जाते हैं, तो इस प्रकार अगर आप ताली बजा करके भगवत नाम कीर्तन करेंगे तो आपके जितने शरीर में पाप की चिड़िया बैठे सब उड़ जाएंगे। उड़ तो जाएंगे, लेकिन उड़ जाकर जाएंगे कहाँ, आसमान में थोड़ी देंगे, कोई ना कोई तो बैठेंगे, जहाँ साउंड नहीं है, चुपचाप पेड़ टूटा है वही पेड़ में जाकर बैठेंगे। तो इसमें से जितने हैं जो कीर्तन करेगा, ताली बजाएगा, उससे तो पाप उड़ जाएंगे, लेकिन जाकर बैठेंगे कहाँ, दूर नहीं जाएंगे। जो यहाँ कीर्तन नहीं करता होगा, जो उसी के ऊपर सभी का होलसेल मैटर ही बैठा, तो इसलिए कम से कम हम नहीं चाहते हैं आप जाए शुभ तिथि में कटवाड़ा में और सारे का होलसेल पाप से ढोकर निकल जाओ, अनलोड करके जाओ थोड़ा लाइट करके। तो इसलिए कोई शर्म करने का जरूरत नहीं, अगर शर्म लगता है तो आंख बंद कर लो, कोई देखना नहीं, आंख बंद करके भी भल्ली में ताली बजा करके, मुंह खोल करके भगवान के नाम कीर्तन कीजिए। करेंगे, रेडी, ठीक, फिर करते हैं। ये कंडीशन, हरे कृष्णा 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 हरे Thank you. जय हो।
बाकी नोट प्रभु सेशन
बाकी
प्रसाद के बारे में बोलेंगे ना
बाद में प्रसाद
यस यस यस
दक्षिणायन से राष्ट्र शुरू होती है।
हाँ हाँ विष्णु का शयन देवलोक का ये विष्णु लोक का है। हाँ जी
आपने जो गंगा जी के उस भगीरथ के पास दो वरदान मांगे थे गंगा जी एक वरदान मांगा था कोई मुझे झिलने वाला हो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढे लो और दूसरा मेरे पवित्र जल से जो भी व्यक्ति छुएगा वो पवित्र हो जाएगा लेकिन जिसका जो पाप है वो पाप मैं नहीं लूंगी वो पाप भगीरथ को ले तुमको लेना पड़ेगा।
अच्छा
ऐसा गंगा जी ने कहा।
अच्छा आपको बोला था
नहीं
तो ऐसा नहीं लिखा है
दो वरदान मांगे थे गंगा
जी बैठे पता नहीं भगीरथ लेकर जाएगा पाप पागल है क्या
पागल में लिखा
नहीं तो गलत पड़े हैं नहीं
दो वरदान मांगे थे गंगा जी
मेरे नाम है तो आकर के सलाम करेंगे
गंगा जी ने प्रार्थना की मेरे ऊपर सारे पाप लोड कर देंगे मेरा कैसे उद्धार होगा तो भगवान उनको बोले थे जब संत अरुणोदय स्नान करेंगे तभी तरह होगा
पाप के लिए नहीं लूंगी पुण्य
भी
आप जो नहीं जानते ढंग से पढ़िए मूर्खता का परिचय मत दीजिए है ना सबके सामने मूर्ख मत बनिए ढंग से पढ़िए एनीवे और कोई कुछ बोलेगा हाँ तो ही बात है
जो तीर्थ को पवित्र करने वाले साधु होते हैं इसलिए किसी सन्यासी को उनके नाम के बाद हम बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं महाराज बोलते हैं गोस्वामी बोलते हैं बट असल में ये बोलना चाहिए फलाना तीर्थ क्योंकि सारे तीर्थ उनके उनके पवित्र वो उनके अपने पवित्र से उनको उनको प्यूरिफाई करते हैं तो इसलिए तीर्थ बोलते आनंद
वो तो कहा गया लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है भगवान की पद के जो पराग था चरण रज था उस पानी में आज के करोड़ों करोड़ों साल पहले एक ड्रॉप पद रज लग गया था वो इतने शक्तिशाली हो गया और उसको कोई नाम लेने से दर्शन मात्र से प्रभाव करता है और छू लेने से तो कई युग का आस भी ढेर भी पवित्र हो गया मुक्त हो गए और क्या कहना है ये भगवत पद रज की महिमा इसी के लिए तो भगवान शंकर उसको अपने सर में चढ़ाए ये चरणामृत है इसलिए जटाशंकर ही नाम पड़ा उनका गंगाधर हुआ गंगा जी का नाम जटाशंकर गंगाधर तो महादेव का नाम हुआ क्योंकि इसलिए गंगाधर नाम लिए क्यों जानते हैं कि ये भगवत चरणामृत है भगवत पद रज की महिमा इसमें इसमें भगवत पद पराग है इसलिए शक्ति संपन्न है ये है शक्ति की महिमा गंगा जी का हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की उत्तरायण संक्रांति की मकर संक्रांति की निकाल गोर हरि कुमार
Yes. सब लोग बैठ के प्लीज अनाउंसमेंट है बहुत जरूरी अनाउंसमेंट